निक जन्नत बाजार जा रहा था। पीछे से वो प्रियल को घर पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने जीनी, आलिया और परी को प्रियल पर नज़र रखने के लिए घर पर बुलाया था। जीनी ने अंदर आते ही कहा, ये कैसी जिद लगा रखी है प्रियल, जब निक बोल रहा है कि नहीं जाना तो नहीं जाना। प्रियल ने कहा, हाँ लो तुम सब इनकी साइड, यहाँ मुझे फाइलें पढ़ने के काम में लगाकर खुद वहाँ जाकर, मतलब मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? इतनी सारी फाइलें मैं अकेली कब तक चेक करूँगी? अरे आलिया है ना, ये तुम्हारी हेल्प कर देगी, है ना आलिया? निक ने आलिया की तरफ देखकर कहा। आलिया ने कहा, हाँ भाई हाँ, नहीं प्रियल तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, हम दोनों पॉइंट वाइज देखेंगे कि कौन सी लड़की की क्या फीचर मिलती है, या हो सकता है कि कुछ लड़कियों के नाम भी सेम हो, और तब तक मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और जीनी आप बस आराम करना, परी ने मुस्कुराकर कहा। प्रियल ने कहा, मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, आप तो यही चाहते हो कि मैं जन्नत बाजार में वापस ना जाऊं, इसलिए आप सभी लोग मिलकर ये ड्रामा कर रहे हो ना? ड्रामा करना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो जन्नत बाजार पहुंचकर तुम्हें कॉल कर दूंगा, खुद अपने कानों से सुन लेना कि वहां क्या हो रहा है, निक ने गुस्से में जवाब दिया। जैसे तैसे प्रियल को समझाकर जन्नत बाजार गया। वहां पहुंचकर उसने प्रियल को कॉल किया। उधर प्रियल, आलिया, जीनी और परी जन्नत बाजार में होने वाली सभी बातें सुन रही थीं। निक जन्नत बाजार पहुंचकर सीधा सुनहरी और रूपाली के पास गया, जहां पर वे दोनों बैठकर जन्नत के ही बारे में बात कर रही थीं। सुनहरी ने निक को देखकर कहा, अरे साहब बहुत दिन लगा दिए इस बार तो आने में। तो चिड़िया को पिंजरे से उड़ा ही दिया तुम दोनों ने, निक ने उनके पास बैठकर कहा। रूपाली ने सख्त आवाज में कहा, चिड़िया एक बार वापस घोंसले में आते जाए फिर तो फड़फड़ाने के भी लायक नहीं छोड़ेंगी, पता नहीं किस कोने में जाकर छुप कर बैठी है, कब तक छुपेगी, इस बार उसके इशारेबाजी और आंसू भी कुछ काम नहीं आएंगे, मिलने तो दो, पहली गोली तो मैं ही मारूंगी, सुनहरी ने कहा। ये सब बातें हैं तुम लोगों की, वापस मिलेगी तो फिर उसे नाचना शुरू कर दोगी, जन्नत बाजार की जन्नत बोलकर, सुनहरी ने मिक की बात काटकर कहा, इस बार ऐसा नहीं होगा, जिस दिन सामने आई आपकी आंखों के सामने ही गोली मारूंगी, और उससे पहले मैं तुम दोनों जान ले लूं, ये मारेगी मेरी गुड़िया को, निक ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखकर सोचा। मैं आती हूँ, कहकर सुनहरी किसी काम की वजह से बाहर चली गई। तभी रूपाली की नज़र निक के हाथ और गर्दन पर लगे निशान पर गई। रूपाली ने निक के गर्दन पर हाथ लगाकर कहा, अरे वाह साहब, मतलब बहुत मज़े किए हैं आपने भी, हमारे जन्नत बाजार में तो बड़ा सीधा बनकर घूमते हो, और अब ये गले और हाथ पर निशान बहुत बार मिला होगा आपको, तो करूँ क्या आज रात की सेटिंग, बताओ कैसी चाहिए? ये मरवाएगी मुझे, निक ने अपने मन में सोचा। उधर प्रियल ने कॉल पर उनकी सारी बातें सुन ली। रूपाली की बात सुनकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। निशान? कैसे निशान? धोखा दिया मुझे, आने दो उसे घर, उसकी तो मैं, प्रियल ने गुस्से में कहा। उधर निक भी रूपाली को टालकर उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। ऊपर से निक उसके सामने कॉल भी कट नहीं कर पा रहा था। चलो ना साहब, आज आपको जन्नत बाजार की लड़कियां दिखाती हूँ, अपने हिसाब से किसी भी एक पर हाथ रख देना, आज रात के लिए वो आपकी, रूपाली जबरदस्ती निक को पकड़कर खींचने लगी। प्रियल ने गुस्से में कहा, अगर आज रात ये इंसान घर नहीं आया तो कल टीवी पर इसके मर्डर की न्यूज आ रही होगी। क्या हुआ प्रियल, इजी हो जाओ, ये उनके काम का हिस्सा है, आलिया ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैं भी वहीं पर थी और अच्छे से जानती हूँ कि किसका क्या काम है, प्रियल ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा। निक ने रूपाली का हाथ झटक कर कहा, मुझे कहीं जाना है, बाद में बात करते हैं ना, ऐसे हाथ क्यों झटका, पहले भी तो मैंने कई बार आपका हाथ पकड़ा है, आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे आपकी बीवी यहीं कहीं छुपकर बैठी हो, निक ने अपने मन में कहा। मैंने पहले कब इसका हाथ पकड़ा था, लेकिन मिस शमा वो तो मेरी जान ले लेगी, वैसे भी आजकल एक मौका नहीं छोड़ती मारने का, ओ गॉड प्लीज सेव मी। तो चलें साहब लड़कियां देखने, आज आपको मैं जन्नत बाजार की सारी लड़कियों से मिलवाऊंगी, रूपाली ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। उसके ऐसा कहते ही निक ने सोचा, वैसे सभी लड़कियों से मिलने का आइडिया अच्छा है, मिस्टर मुखर्जी ने आज जो फाइलें दी थीं उसमें काफ़ी सारी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट थी, हो सकता है उनमें से कुछ लड़कियां यहां पर हों, अगर मैंने सबको देखा तो प्रियल की हेल्प हो जाएगी, निक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ चलो लड़कियां देखने चलते हैं, सबसे मिलवाना अच्छे से। हाँ हाँ क्यों नहीं साहब, चलो, प्रियल ने गुस्से में कहा। ये है इनका काम, घर आने दो इसे, बहुत हाथ पकड़ रहा है आजकल ये सबके, तभी मैं सोचूं इसे वहां जाने की इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है, और अब लड़कियां सिलेक्ट करने जा रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे धोखा देकर लड़कियां चुनने जा रहा है, जान ले लूंगी मैं उस निक की, परी ने कहा। लेकिन दीदी तुम तो नाराज हो ना जीजू से, फिर अब किस बात का गुस्सा, चुप कर जीजू की चमची, वैसे भी मैं देख रही हूँ जब से तुम उसके साथ रहने लगी हो उसकी कुछ ज्यादा ही साइड ले रही हो, और तुझे क्या हो गया, जब देखो भाई को डांटती रहती है, आलिया ने पूछा। जीनी ने कहा, प्रियल तुम इनकी बात मत सुनो, किसी और का पता नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। घर आने दो उस निक के बेटे को, फिर बताएंगी उसे। हाँ बहुत बिगड़ गया है, सुधारना पड़ेगा, प्रियल ने कहा। परी ने प्रियल के हाथ से फोन छीनकर कहा, बस बहुत हो गया, मैं कॉल कट कर रही हूँ, जब देखो बेचारे जीजू की क्लास लगाती रहती हो। परी कॉल कट करने लगी कि प्रियल ने उसे गुस्से में देखा, तो उसने बिना कॉल कट किए प्रियल को फोन वापस कर दिया। परी ने कहा, सच कहते हैं जीजू, तुम खूंखार हो गई हो, मैं बोलती हूँ उन्हें कि आज घर ना आए। परी की बेटी चुपचाप बैठी रही यहाँ पर, जीनी ने उसे आंख दिखाते हुए कहा। आलिया ने कहा, देख प्रियल, अब तुम भाई को गलत समझ रही हो, भाई तेरे अलावा किसी और के पास जा ही नहीं सकते। इन 5 सालों में उन्होंने तुझे बहुत मिस किया, आज भी उनकी लाइफ पिछले 5 सालों में ही अटकी हुई है। उसकी बात सुनकर प्रियल को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। उसकी बातों से और बर्ताव से साफ पता चल रहा था कि आज भी उसके दिल में निक के लिए फीलिंग्स हैं। प्रियल ने कॉल कट किया और कहा, मैं भी ना पता नहीं क्यों ओवर रिएक्ट कर गई, हमारे बीच में कौन सा रिश्ता है जो मुझे फर्क पड़ेगा कि वो किसके पास गया या क्या करता है, उसकी लाइफ है, उसे जो करना है कर ले। बोलते हुए प्रियल की आंखें नम हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके इस बर्ताव से उन लोगों को ये पता चले कि वो आज भी निक से प्यार करती है। वो बहाना बनाकर कमरे के अंदर चली गई। प्रियल ने कहा, घर आने दो उन्हें, मैं बताती हूँ, रूपाली ने पहले भी उनका हाथ पकड़ा था, आज तो उनके हाथ को काट के रख दूंगी मैं। नहीं यार, ये तो ज्यादा हो गया, बिना हाथ के अच्छे नहीं लगेंगे, एक बार सबको जाने दो फिर बताती हूँ अकेले में, तब तक कुछ डायलॉग सोच लेती हूँ कि क्या बोलना है, बाद में सो जाऊंगी, क्या पता रात को लेट आए तो जगना पड़े, और अगर नहीं आया तो फिर तो जन्नत बाजार जाकर उसका गला दबा कर आऊंगी। प्रियल अपना गुस्सा शांत करने के लिए कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। दूसरी तरफ जन्नत बाजार में रूपाली ने निक को सभी लड़कियों से मिलवाया। निक हर एक लड़की को गौर से देख रहा था ताकि उनकी पहचान का पता चल सके।
ये साहब आज कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव नहीं कर है, पहले तो एकदम शरीफ बनकर रहते थे जैसे दुनिया में इनके जैसा सीधा आदमी कोई और है ही नहीं, और आज कैसे घूर घूर के सबको देखे जा रहे हैं। वैसे कब तक अपने असली चेहरे को छुपा कर रखता, आज इसकी भी शराफत का नकाब उतर गया, रूपाली ने सोचा। मुझे कोई सी भी अच्छी नहीं लगी, मेरा टेस्ट डिफरेंट है, सभी लड़कियों से मिलने के बाद निक ने बहाना बनाया। रूपाली ने कहा, क्या साहब पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, पिछले 4 घंटे से पूरे जन्नत बाजार की एक एक लड़की को घूर घूर कर देख लिया और अब बोल रहे हो कि मेरा टेस्ट डिफरेंट है। मैं सब जानती हूँ आपका टेस्ट क्या है, आपको जन्नत चाहिए थी ना, और वो यहाँ से निकल गई, आप ताई के सामने उसका नाम भी मत लेना वरना वो भड़क जाएगी। हाँ मुझे जन्नत ही चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने पता नहीं उसे कहाँ भिजवा दिया, अगर वो मिले तो बताना, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अगर आपको मिले तो आप हमें बताना, बाकी अगर यहाँ आपको कोई नहीं पसंद है तो यहाँ पर और भी छोटे मोटे रेड लाइट एरिया हैं, वो भी हमारे ही चलते हैं, आप कहो तो वहाँ से कोई मंगवा दूँ। उसकी बात सुनकर निक ने चौंकते हुए कहा, अच्छा ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि जन्नत बाजार की और भी ब्रांच खोल रखी है तुम लोगों ने, मतलब पैसे लगाए हम और सारा प्रॉफिट लो तुम। रूपाली ने कहा, ऐसी बात नहीं है साहब, ये काम छुपकर करने पड़ते हैं, जन्नत बाजार बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, और मैं जिन जगहों की बात कर रही हूँ वो खुले में नहीं चलते हैं, किसी ने पार्लर खोल रखा है तो किसी ने स्पा के नाम पर सब कर रखा है, तुम मुझे लेकर चलोगी वहाँ? अब जब इतनी बात बता दी है तो आगे की बात भी बता देती हूँ, लेकिन भूल कर भी ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे, जन्नत बाजार के अलावा सुनहरी ताई के अंडर में 10 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये सब धंधा चलता है, पार्लर और स्पा के अलावा बाकी कुछ और जगह हैं, जैसे कि कोई डांस सिखाने के बहाने ये सब करता है तो कोई और बहाने से। इन दिनों एक NGO और एक अनाथ आश्रम तक को ताई अपने अंडर में लेने का सोच रही है, रूपाली ने निक के बिल्कुल करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा। मैं उन सब जगह जाना चाहता हूँ। आज नहीं साहब, और कभी, अभी ताई यहाँ पर है, जिस दिन वो कहीं जाएगी तब सब जगह घुमा लाऊंगी, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई है आपके फायदे की तो कुछ फायदा तो मेरा भी बनता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे पासपोर्ट बनाने का काम स्टार्ट करवा दिया है, तुम मेरा फायदा करवाओ और मैं तुम्हारा, निक ने भोली चढ़ाकर बोला। उसके इस अंदाज से रूपाली हल्के से मुस्कुराई और वहां से गुनगुनाते हुए चली गई। निक भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया, लेकिन बीच में ही उसे मिस्टर मुखर्जी का कॉल आने पर मीटिंग के लिए जाना पड़ा। चैप्टर 2। निक सीक्रेट एजेंसी ऑफिस पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे, वहां और भी 2-3 ऑफिसर्स मौजूद थे। हेलो कैप्टन निक, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर चौधरी और ये मिस अय्यर, बाकी आपका इंट्रोडक्शन करवाने की तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, मिस्टर मुखर्जी ने निक के आते ही उन ऑफिसर्स का परिचय कराते हुए कहा। मिस्टर चौधरी ने कहा, वेलकम कैप्टन निक, काफ़ी टाइम से आपसे मिलने की इच्छा थी, आई मस्ट से जब से आपने इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया है तब से हालातों में काफ़ी सुधार आ रहा है। सिर्फ मैंने ही इस मिशन को ज्वाइन नहीं किया, मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी है। सबने इक्वल मेहनत की है और हमारी मेहनत आप लोगों के बिना अधूरी थी, निक ने पोलाइटली जवाब दिया। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, सच में सर, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। जहां लोग दूसरों के काम का भी क्रेडिट लेने से नहीं चूकते, वहां आप अपने काम का क्रेडिट भी हम सबको दे रहे हैं। निक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इसी को टीम वर्क बोलते हैं। एक बेस्ट टीम लीडर वही होता है जो अपने सभी सक्सेस का क्रेडिट अपनी पूरी टीम को दे, ना कि सारा क्रेडिट अकेले खुद ही ले ले। मिस अय्यर ने कहा, वैसे सर जन्नत बाजार के काफी सारी डील्स कैंसिल हो चुकी हैं और काफी वक्त से उन्होंने विदेश में लड़कियां भी एक्सपोर्ट नहीं की। लगता है अब जन्नत बाजार के बंद होने का टाइम आ गया है और इसी के साथ कोलकाता का रेड लाइट एरिया भी तबाह हो जाएगा। वेल, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम बहुत गलत हैं, क्योंकि सिर्फ जन्नत बाजार ही नहीं, उनके अंडर में बहुत सारी ऐसी और भी जगह हैं जिनके जरिए अपने काम को आगे भी चला सकती हैं। मुझे तो सुनकर बहुत हैरानी हुई कि बाकी जगहों का तो छोड़ो, उन्होंने तो ऑर्फिनेज और एनजीओ तक को इन सब कामों में शामिल कर रखा है। मेरी आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप किसी पर पूरा टेस्ट नहीं कर ले, तब तक इस मिशन से जुड़ी किसी भी बात को किसी के भी सामने नहीं कहेंगे, वरना हम सबकी इतने दिनों की मेहनत पर पानी गिरते देर नहीं लगेगी, निक ने उन्हें बताया। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, सही कह रहे हैं सर आप। वैसे मैंने मिस शर्मा को जो फाइलें दी थी वो हमारे बहुत काम की है, अब तक तो उन्होंने सारी फाइलें पढ़ भी ली होंगी। मुझे नहीं पता मिस्टर मुखर्जी, मैं घर पर नहीं था, बाकी मिस शर्मा क्या करती है वो तो वही जान सकती है। चलो अब मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रूपाली मुझे जल्द से जल्द उन सभी जगहों पर ले जाए। वैसे मैंने भी आज जन्नत बाजार की लगभग सभी लड़कियों को देखा है, शायद मैं मिस शर्मा की कुछ मदद कर पाऊँ, निक ने जवाब दिया। हाँ जरूर, लेकिन मिस शर्मा अपने काम में इतनी परफेक्ट है कि उन्होंने अब तक सारी फाइलों को रीड करके उनके पॉइंट भी बना लिए होंगे। हाँ वो तो घर जाकर पता चलेगा, चलो तो फिर चलता हूँ मैं, कहकर निक वहां से जाने लगा कि तभी मिस्टर मुखर्जी ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अच्छा सर, हो सके तो कल सुबह तक रिपोर्ट तैयार कर दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ लेने। मैं मिस शर्मा को बोल दूंगा, निक ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो कि प्रियल की तारीफ सुनने के बाद थी। इतनी खुशी तो मुझे खुद की तारीफ सुनकर भी नहीं हुई जितनी आज तुम्हारे एप्रिसिएशन पर मिल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे तुमने नहीं, मैंने ही कुछ अचीव किया हो। तुमसे मिलकर तुम्हें जरूर बताऊंगा कि तुम्हारी तारीफ सुनकर आज मुझे खुद पर कितना प्राउड फील हो रहा है, सोचते हुए निक घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा।